राधा माधव जय कुंज गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानन्द जय व्रज जनरञ्ज जय यशोदा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Yeah. ज्ञानत्रिदङ्गस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं साविदानेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदादिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरुन् वैष्णवाम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सुन्दरते ध्यान उभे विटे वरी करकटावरी ठेवनिया तुलसी हर गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान। मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहेन श्रीमुख आवडीने। गज विठ्ठल रखो माई गज विठ्ठल रखो माई हरि बोल गज विठ्ठल रखो माई जय विठ्ठल रघु माई जय 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 विठ्ठल रघु माई आराध्य भगवान् प्रदेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान् శ్రీ చైతన్య మహాప్రభోర్మతమిదం తత్రాదరో న పరః. శ్రీరామచంద్రచరణో మనసా స్మరామి, శ్రీరామచంద్రచరణో వచసా గృణామి, శ్రీరామచంద్రచరణో శిరసా నమామి, శ్రీరామచంద్రచరణో శరణం ప్రపద్యే. వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానందో సహోదితో గౌడోదయే పుష్పవంతో చిత్రోషం దో తమోనుదో. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిని నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది తోర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ,
శ్రీమద్భాగవతం కీ జయ. యథాయ గౌరవ ప్రేమానందే అద్భుత సంబంధిత సమస్త ఉపస్థిత భక్తవృంద కీ జయ. Thank you. Hare. Hare Krishna. Hare Baba. तो समस्त उपस्थित भक्तों का स्वागत है। आपके उपस्थिति के लिए हम आभारी भी है और आपकी उपस्थिति का हम अभिनंदन भी करते हैं। तो यहाँ कौंडिन्यपुर धाम पे रुक्मिणी द्वारकानाथ गौरनिधाय गिरि गोवर्धन धारी मंदिर में प्रातःकालीन भागवत कक्षा के श्रवण हेतु उपस्थित हो स्वागत है। हरि ओम। प्रातःकाल की पावन वेला है। और भगवान और भक्त जो प्रातः स्मरणीय है उठते ही जिनका स्मरण करना चाहिए। या जिनका दर्शन करना चाहिए। इनका प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। तो अब तो समय है उनके स्मरण का। वैसे दर्शन करते तो स्मरण होना चाहिए। उनका दर्शन भी स्मरण दिलाने के लिए ही है। और ये नहीं कि आप अभी अभी जगे हो और प्रातःकाल में आप श्रवण से शुरुआत कर रहे हैं, भागवत श्रवण से। वैसे प्रातःकाल से आप और भी श्रवण कर रहे थे, गुरुमास्टर का भी कीर्तन हुआ, संसार धाम नललीध लोक त्राणाय कारण्य, उसका भी श्रवण हुआ। उसका उद्देश्य भी हरि हरि स्मरण के लिए ही है। फिर आप प्रातः काल में ही जप यज्ञ में लगे थे, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी जप योग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का श्रवण किए, कीर्तन किए, या पहले कीर्तन किए स्वयं ही, आप स्वयं ही उसका श्रवण भी किए, उसका फल या परिणाम या उद्देश्य भी क्या है? क्या है? स्मरण ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम। और अब भागवत श्रवण के हेतु या एकत्रित हुए हैं और भागवत का श्रवण होगा तो उद्देश्य क्या है? स्मरण ही है। सततम् स्मर्तव्यः विष्णुः विस्मर्तव्य न जातोचित्। हमारी वृंदावन की गोपियां है उनका यही फिलॉसफी। वो क्या करना चाहती है? सततम स्मर्तव्यः विष्णु, विष्णु का कृष्ण का, विष्णु का मतलब कृष्ण का है यहाँ स्मरण। और विस्मर्तव्य न जात उचित, और कभी भी विस्मरण नहीं, सदैव स्मरण और विस्मरण कभी भी नहीं। तो लगता है कि स्मरण ही सर्वोपरि है। साध्य है श्रवण, साध्य है कीर्तन, साध्य है। तो श्रवण कीर्तन की सिद्धि किसमें है? स्मरण में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, सुनना तो चाहिए। सुनते सुनते सो गए, ऑफ हो गए, तो सर्किट क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। स्मरण, स्मरण का जो दीपक जलना चाहिए या जल रहा था, श्रवण कीर्तन बंद हो गया। वो खंडित हुआ हरी हरी। तो फिर उसका जो फल है स्मरण, वो भी प्राप्त नहीं होगा। हरी हरी तो हुआ। तो स्मरण, स्मरण की, स्मरण भक्ति की जाए या श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति की जाए या फिर नवविधा भक्ति की जाए, जाए 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 राधा रानी की जाए, रुक्मिणी मैया की जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का ये 10वां स्कंद और अध्याय संख्या 52 का श्लोक संख्या 37 आज पढ़ेंगे। श्री रुक्मिणी उवाच, फलक पर लिखा तो नहीं है इसलिए मैं अकेला ही पढ़ता हूं, आप सुनिए फिर स्मरण होगा। मैं कीर्तन करूंगा, आप श्रवण करोगे, हम दोनों भी श्रवण करता और कीर्तन करता, वे स्मरण का फल उनको प्राप्त होगा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर षण्मतां ते निर्विश्यकर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युत विशदि चित्तं अपत्रपम मे। अब पीछे कहिए शब्दार्थ। श्री रुक्मिणी उवाच, श्री रुक्मिणी ने कहा, श्रुत्वा सुनकर, गुणान गुणों को,
भुवना सारे लोकों को सुंदर हे सौंदर्य श्रणवताम सुनने वालों के लिए ते तुम्हारा निर्विश्य प्रवेश करके कर्ण कानों के विवरई ही छेदों से हरतः हटाते हुए अंग उनके शरीरों की तापम पीड़ा रूपम सौंदर्य दृशाम देखने की इंद्रिय का दृशिमताम आँख वालों का अखिल समग्र अर्थ इच्छा पूर्ति का लाभम प्राप्ति त्वयि तुम में अच्युत हे अच्युत कृष्ण आविशति प्रवेश करती है चित्तम चित्त में अपत्रपम निर्लज्ज में मेरे अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपादों के शिष्यों द्वारा प्रभुपाद की ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे पत्र में यह अनुवाद है। ये श्लोक भी है तो उसका अनुवाद भी है। श्री रुक्मिणी ने कहा हे जगतों के सौंदर्य आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वालों की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण मैंने आपका निर्लज्ज मन अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तात्पर्य रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी। कौन से राजा? भीष्मक राजा। कहाँ के राजा? विदर्भ के राजा। इस राज्य की राजधानी कौंडिन्यपुर। तो ऐसे महाराजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी वह साहसी तथा निडर थी। कौन? रुक्मिणी साहसी और निडर मतलब डरपोक नहीं थी। हो सकता है कोई स्त्री या डरपोक हो सकती है लेकिन ये रुक्मिणी साहसी और निडर थी। और वह कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना प्रसन्न करती। नहीं मिलेंगे तो मैं और किसी को स्वीकार नहीं करूंगी पति रूप में। मैं तो मरना ही पसंद करूंगी। अगर आप मुझे पति रूप में नहीं मिलते हो तो ऐसा लिखा था उसने पत्र में। यह पत्र की शुरुआत ही है। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें कृष्ण से याचना की गई कि वे आकर उसे ले जाए। उस पत्र में वो याचना थी। क्या हुआ? रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर षण्मतां ते निर्विशकर्ण विवरै हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृशिं दृशिमतां अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रम् अपत्रम् पत्रपम् मयि। तो ये वचन जो आज प्रातःकालीन भागवत कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, ये वचन रुक्मिणी का है, लिखा ही है रुक्मिणी उवाच। उवाच मतलब कहा, किसने कहा? रुक्मिणी ने कहा, उसे कहा तो नहीं था, लिखा लिखा था, लेकिन मन में विचार आते हैं तभी तो व्यक्ति लिखता भी है। तो फिर जो लिखा था उसको कहा था ऐसा भी कहा जा सकता है। तो यह कहा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को गंगा के तट पर। तो उन्होंने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी उवाच, रुक्मिणी ने क्या कहा, ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा। और यहां पर जो रुक्मिणी ने कहा या लिखा था वह बात द्वारिका में ब्राह्मण देवता पढ़ के सुना रहे हैं, एक विश्वस्त कॉन्फिडेंशियल ब्राह्मण के हाथ में दिया था पत्र। तो पत्र लेके पहुंचा वो ब्राह्मण द्वारिका में, विश्वास होता विश्वस्त था, इसलिए क्या अगले पहले के तात्पर्य में लिखा है, कहीं पर लिखा है कि ब्राह्मण ने वहां जाने पर कृष्ण के समक्ष कृष्ण की उपस्थिति में उस पत्र का सील फोड़ा। जिनके लिए पत्र लिखा था, जिनको संबोधित करके रुक्मिणी ने लिखा था, और वो कॉन्फिडेंशियल मैसेज था, प्राइवेट पर्सनल, उस व्यक्ति के लिए ही, कृष्ण के लिए था। तो उस ब्राह्मण में ब्राह्मण ने रास्ते में उसको कॉन्फिडेंशियल था, अच्छा विश्वास वो ब्राह्मण था, तो विश्वास पात्र। तो ब्राह्मण ने कृष्ण के समक्ष उसको खोल दिया। तस्मै सर्वम् अवर्णयत, पिछले के श्लोक में कहा, कहो कहो क्या समाचार है। एवं संप्रष्ट प्रश्नो ब्राह्मणः परम प्रेष्ठिना। तो कृष्ण द्वारा परम प्रेष्ठिना, कृष्ण द्वारा जब संप्रश्नः ब्राह्मण को प्रश्न पूछा, तो फिर ब्राह्मण ने ब्राह्मणः, फिर ब्राह्मण ने तस्मै मतलब उस भगवान के समक्ष सर्वम् अवर्णयत, तो सब कुछ खुलासा किया। सारा समाचार कुछ सुनाया भी, और मुख्य समाचार तो रुक्मिणी के पत्र में था, उन्हें कुछ कहा होगा क्या परिस्थिति है, क्या हालचाल कौंडिन्यपुर में और राजा भीष्मक के नगरी में और राजा भीष्मक के भवन में और फिर उस पुत्री का क्या हाल, क्या मनस्थिति, उसके क्या विचार, उसको कैसी परेशानी, ऐसा कुछ कहा होगा। समवर्णयत, वर्णन किया। तो मुख्य बात तो जानने की जो थी, और रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखी थी ही, तो उस ब्राह्मण ने वो पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। तो इसीलिए यह लिखा है, ब्राह्मण रुक्मिणी उवाच, रुक्मिणी ने कहा। तो रुक्मिणी के पत्र का प्रारंभ इस प्रकार हुआ है जो आज का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। इस पत्र में 7 पैराग्राफ, पैराग्राफ समझते हैं, 7 पैराग्राफ वाला ये पत्र रुक्मिणी का पर्सनल प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल अति गोपनीय पत्र संक्षिप्त ही है, जैसे 7 पैराग्राफ वाला, इसीलिए हम कह रहे 7 पैराग्राफ, 7 श्लोक है उसमें। ये 37वां श्लोक, 37वें श्लोक से 43 श्लोक तक रुक्मिणी का पत्र है। जो लिखा था यहाँ कौंडिन्यपुर में और पढ़ के सुनाया जा रहा था द्वारिका में, तो ब्राह्मण जब पढ़ रहे हैं तो वे पढ़ रहे रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा, रुक्मिणी ने कहा, श्रुत्वा मैंने सुनकर, मैंने क्या सुना, गुणान भुवन सुंदर, संबोधित भी कर रहे, हे भुवन सुंदर, क्या करे, हे भुवन सुंदर, आप भुवन सुंदर हो, इस त्रिभुवन में अति सुंदर, सर्वांग सुंदर या सर्वोपरि सुंदर, आपका सौंदर्य कैसा है, अनुपम है, मैचलेस, ऐसे सर्वांग सुंदर, श्याम सुंदर, भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान, मैंने हे भुवन सुंदर आपके गुणों को सुनकर, गुणान हरि हरि, गुणान श्रुत्वा, हे भुवन सुंदर गुणान श्रुत्वा, ते है, ते गुणान श्रुत्वा हे भुवन सुंदर, जब मैंने सुने, क्या सुना, आपके गुणों का वर्णन सुना, बचपन से सुनी रही थी, बचपन से सुनी रही थी, अधिकतर सुनाई करती थी भगवान के गुण का वर्णन, और फिर गुण का ही वर्णन नहीं सुनती होगी और किसका वर्णन सुनती होगी, भगवान के रूप का वर्णन सुनती होगी, तो इस कौंडिन्यपुर में आने वाले ऋषि मुनि द्वारकाधीश के केवल गुणों का वर्णन नहीं करते होंगे, साथ में भगवान के सौंदर्य का वर्णन, रूप का वर्णन, लीलाओं का वर्णन, नाम का वर्णन, नाम का नाम, नाम का महिमा, नाम नाम ही नाम, कई सारे नाम या सहस्र नाम। तो वह श्रुत्वा, ये सब सुनकर, यहाँ तो गुणों का ही उल्लेख कर रही है, लेकिन उसने केवल गुणों को नहीं सुना होगा। या भगवान का जब वर्णन होता है या वैसे कहा जाता है, ऐसी समझ है कि यह किसी व्यक्ति को जानना है तो उस व्यक्ति के नाम को हम जानते हैं। वो क्या नाम है उसका? ओह अच्छा अच्छा, वो नाम है। वो कैसे दिखते हैं? ये रहा उनका फोटोग्राफ। अब रहते कहाँ है? ये उनका एड्रेस, ये उनका धाम या उनका ग्राम। और वे कैसे हैं? बड़े भले सज्जन है या बदमाश है, ऐसा भी हो सकता है, दुर्गुण भी हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को जानना मतलब उस व्यक्ति के नाम को जानना, उस व्यक्ति के रूप को जानना कैसा दिखता है, उस व्यक्ति के गुणों को जानना, उस व्यक्ति का ड्रेस का जानना, पता जानना, और उस व्यक्ति के कार्यकलापों को जानना। तो जब कृष्ण को, भगवान को जब जानने की बात है तो फिर वही बात, भगवान के नाम को, रूप को, गुण को, लीला को, धाम को जानना भगवान को जानना है, जो इस श्रीमद् भागवत का विषय वस्तु है। श्रीमद् भागवत में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन मिलता है, जैसे यह हम पढ़ ही रहे हैं। तो इन सब को जो रुक्मिणी सुना करती थी, तो उसने कहा है, पत्र में लिखा, श्रुत्वा, मैंने सुनकर, क्या सुनकर? गुणों को सुनकर, हे भुवन सुंदर शर्णवताम ते, और जब मैं सुनती थी, निर्विशकर्ण विवरई, तो जब मैं सुना करती थी आपके गुणों का वर्णन, तो गुणों का वर्णन क्या करता था? निर्विश्य वो गुणों का वर्णन प्रवेश करता था, वो ध्वनि, वो शब्द पहुंच जाते थे। कर्ण विवरई, कर्ण रंध्रई, कर्ण विवरई, कहाँ पहुंचते थे? मेरे हृदय प्रांगण में पहुंचते थे वो सारा गुणों का वर्णन। सुनने वाला तो कौन है? आत्मा है। सुनने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा कहाँ निवास करता है? हाँ, शरीर में। शरीर में तो करता है, शरीर में कहाँ? हथेली में। यह आत्मा अंदर है, वहां भी है, लेकिन वहां आत्मा का कुछ क्या है? आत्मा का संवेदना है या कॉन्शियसनेस है, भाव है, कुछ प्रकाश है। तो आत्मा तो पैर में या घुटने में या हथेली में या सिर में या कान में यहाँ कहीं स्पर्श करते ही पता चलता है, कुछ हम अनुभव करते हैं उपस्थिति का, लेकिन उसका स्थान कौन सा है, बेस कहाँ है, या गर्भगृह कहो, वो गुफा में रहता है, गुफा में रहता है, हृदय की गुफा में आत्मा का निवास। फिर उसका ये शरीर क्षेत्र बन जाता है, कार्य क्षेत्र, तो फैल जाता है पूरे शरीर में, लेकिन है तो उसका मूल जो स्थान है आत्मा का हृदय में है। तो रुक्मिणी कह रही है कि मैंने जब सुना, श्रुत्वा गुणान हे भुवन सुंदर, तो कर्ण विवरई, तो पहुंच गया आपकी गुण की गाथा मेरे हृदय प्रांगण में पहुंच गई, जहां मैं रहती हूं या आत्मा रहता है। वैसे रुक्मिणी की बात थोड़ी अलग है, यह होनी चाहिए, उसका आत्मा, उसका सारा विग्रह रूप ही आत्मा है। आत्मा और शरीर में भेद नहीं है, हमारा आत्मा है और हमारा शरीर है, लेकिन रुक्मिणी की आत्मा ही उसका शरीर है, शरीर ही आत्मा है। तो भी भगवान भी तो कहे हैं, साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूं, भगवान कहते हैं मैं साधु के हृदय में रहता हूं और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। तो हृदय तो है, कृष्ण का भी हृदय है, रुक्मिणी का भी हृदय है, तो हृदय में जब गुण की गाथा जब पहुंची, पहुंचती रही, हर रोज पहुंच रही थी, हर रोज मैं सुन रही थी, नित्यम भागवत सेवया कर रही थी, बस गुड आइडिया। तो वह रुक्मिणी या कभी कभी या साल भर में बस एक सप्ताह के लिए भागवत कथा सुनी, हो गया हमारा कोटा पूरा, हो गया हमने अपना फर्ज निभा लिया, 7 दिन के लिए कथा सुनी। लेकिन रुक्मिणी क्या केवल 7 दिन के लिए सुनती थी, हर रोज सुनती थी, हर रोज सुनती थी, नित्यम भागवत सेवया। तो जब मैं सुनती थी तो कर्ण विवरई, और सुने हुए वचन जब मेरे कर्णों से हृदय प्रांगण तक पहुंचते थे, तो उसे क्या होता था, हरतो अंग तापम, तो मेरे अंग का सारा जो ताप है, पीड़ा है, और मिट जाती थी, शांत होती थी आपकी लीला कथा का रूप माधुरी का सौंदर्य का वर्णन सुन के, मैं शांत प्रसन्न हो जाती थी। हर तो अंग तापम, अंग ताप, ताप त्रिताप भी है, त्रिताप आदि, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक ताप, ताप ताप को हम लोग मराठी में ताप, कितनी ताप है, ताप जो बुखार, कितना टेम्परेचर ताप। इस संसार में तो इस संसार को आग लगी है, इस संसार में रहना मतलब सब समय बुखार चढ़ा ही रहता है, तब समयताप से त्रस्त ग्रस्त हम होते ही रहते हैं। इस ताप को मिटाने के लिए हम देख रहे हैं रुक्मिणी का ताप, रुक्मिणी का भी ताप मिट रहा था क्या करने से, श्रुत्वा गुणान, भुवन सुंदर के, श्याम सुंदर के, द्वारकाधीश के गुणों का वर्णन जब सुनती थी तो हरतो अंग तापम, तापत्रय उन्मूलनम, ऐसे भी लिखा है श्रीमद् भागवत के बिल्कुल प्रारंभ में लिखा है, शिवदम, ये पवित्र है श्रीमद् भागवतम। और क्या करेगा, तापत्रय उन्मूलनम, यह भी ताप की बात रुक्मिणी ने लिखी है श्रीमद् भागवत का या भगवान की कथा का पूर्ण का वर्णन करती थी तो ताप, मेरा ताप मिट गया। तो ये सभी के ताप को मिटा सकता है ये श्रीमद् भागवत का श्रवण, ये भी सीखना समझना होगा। रुक्मिणी हमारे समक्ष उदाहरण है तो रुक्मिणी का ताप मिट गया तो औरों का भी ताप जरूर मिटाएगा ये भागवत का श्रवण कीर्तन। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हो गया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जनः। गोपियों ने बात, गोप्यः उचुहु, श्रीमद् भागवत में आगे आगे आएगा कि पहले हो गया, पहले हो गया, या तो द्वारका लीला चल रही है तो वृंदावन लीला में पहले गोपियां कह चुकी है, गोपी गीत में, नॉट गोपी गीत, गोपी गीत में, गोपी गीत में गोपियों ने कहा तव कथामृत, तुम्हारा हे कृष्ण तुम्हारे कथा का अमृत, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जो जीवन कैसा तपा हुआ जीवन, तप्त जीवन, विरह की अग्नि, विरह की व्यथा, विरह की ज्वाला में जो हम जल रही थी, जब जलती है तो फिर जब हम क्या करती है, तव कथामृतम, तुम्हारे कथा का श्रवण करती है तो फिर वो ज्वाला बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तव कथामृतम। तो वह तापत्रय उन्मूलनम, अभी हम कह रहे थे भागवत क्या करता है, तापत्रय त्रय तीन प्रकार के ताप को उन्मूलनम, उन्मूलनम क्या होता है, मूल है, मूल, मूल मतलब मुलगा मुलगी नवे, मूल 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 मतलब जड़, द रूट। तो मूल को या जो ताप का जो मूल है जिसके कारण ताप या अलग अलग ताप, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक ताप त्रास, तो भागवत के श्रवण से क्या होगा, उन्मूलनम, मूल से उखाड़ा जाएगा उसको, केवल ऊपर से ट्रिमिंग कर दिया, कुछ शाखा उपशाखा पत्ते कुछ काट दिए, तो फिर क्या होगा, पुनः उग आएगा। तो वह हरी हरी तो श्रीमद् भागवत का श्रवण सारे समस्या का हल है। हरी हरी रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। और वो अभी दृशाम दर्शन की बात कर रही है, रूपम दृशाम। तो हुआ यह जब व्यक्ति सुनता है भगवान के संबंध में, गुणों के संबंध में, या कोई बात सुनता है, हम कह ही रहे थे प्रारंभ में, उसको कृष्ण का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा। तो भगवान का स्मरण मतलब भगवान के रूप का भी स्मरण, और रूप को तो अलग नहीं किया जा सकता। जो गुणवान है, तो ऐसे ऐसे दिखने वाले कृष्ण गुणवान है, तो गुणों का वर्णन होते ही भगवान के रूप का दर्शन या वर्णन या स्मरण, भगवान के नाम का उल्लेख हुआ तो अभिन्नत्वात् नाम अनामिनौ, नाम और नामी अभिन्न है, तो आ गया पुनः रूप आ गया। नाम लेते ही नाम पहुंचाता है रूप तक, गुण पहुंचाते हैं रूप तक, या गुणों से नाम, गुणों से रूप अलग नहीं किया जा सकता, नाम से रूप को अलग नहीं किया जा सकता, ये भी सिद्धांत है। अभिन्नत्वात् नाम अनामिनौ, इसलिए ये अभिन्नत्व जो है पुनः पुनः इसका उल्लेख होता है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, भगवान के गुण और भगवान अभिन्न है, भगवान की लीला और भगवान नॉन डिफरेंट अभिन्न है। तो अभी तो रुक्मिणी ने कहा कि मैंने सुना आपके गुणों के बारे में, तो हुआ क्या, रूपम दृशाम दर्शन हुआ। तो रूप या तो गुणों का वर्णन सुना, नाम का वर्णन सुना, लीला का वर्णन सुना, तो दर्शन हुआ। दृशिमताम तो दर्शन करने वाले जो है, तो उनको फल मिला अखिलार्थ लाभम। तो जो दर्शन करने के इच्छुक है, दृशिमताम दृशिमताम, तो जो दृशिमता आंख वालों का, दृशिमता आंख वालों का अखिलार्थ लाभम, तो वह आंख वाले, आंख आंख होने का क्या उपयोग है या क्या फल है, क्या फल है, आंख है तो आंख का क्या फल है, क्या परिणाम है या क्या उपयोग है, देखना, आंख है और देखा नहीं तो फिर क्या, फिर बेकार है आंख है, वो बात दूसरी है। तो आंख है तो उसका फल मिलता मिलेगा, जो सुनेंगे भगवान के संबंध में तो उनको दर्शन भी होगा और फिर उनके दृष्टि का वो सिद्धि है, फल है, उन्होंने आपका दर्शन किया। या आपका दर्शन किया तो फिर वो आपका वैसे फल मिला, आपका दर्शन किया तो। लेकिन और चीजों का, संसार के वस्तुओं का ही उसने दर्शन या देखता रहा तो आंख बेकार रहेगा, वो फिर आंख बेकार है। जिन आंखों से हमने संसार को ही देखा और कृष्ण को नहीं देखा, क्या काम? अच्छा है कि अंधा होना। फिर तुकाराम महाराज भी तो कहते ही है, पापा जी वासना न कोदा उडोला क्या होनी आंधड़ा बरा समी। तो काम है, तुकाराम महाराज की प्रार्थना है, पापा जी वासना न कोदा उडोला, हे भगवान मुझे अपने आंखों से पाप नहीं दिखाना। अगर मैं मेरे आंखों का उपयोग पाप देखने के लिए करने वाला हूं या कर भी रहा हूं तो अच्छा है, क्या करो, मुझे अंधा बना दो, मुझे अंधा बना दो, हे विठल पांडुरंग कृपा करो। पापा जी वासना नको दाऊ डोड़ा त्या होनी आंधड़ा बरासन, पापाची वाणी नको माझा कानी, ऐसे ऐसे ही कहा, पाप की वाणी या वचन भी मैं सुनना भी नहीं चाहता हूं, उससे अच्छा है कि मैं क्या बनूं, बहरा बना दो, मेक मी डेफ। ऐसे हर इंद्रिय के लिए वो कहते हैं, तो या कभी कभी आई ऑपरेशन कैंप वगैरह भी चलते हैं तो हम पता, हम कहते तो है, पता नहीं उन्हें सुना कि नहीं, आई ऑपरेशन कैंप होता नहीं, दृष्टिदान, कई लोगों को, अंधों को आई ऑपरेशन होता है और फिर वो दृष्टिदान देते हैं। तो हमारा कहना है कि ठीक है, आप उनको देना चाहते हो तो दे दो सही, लेकिन उनसे वादा करवाओ कि जब उनको दृष्टि प्राप्त होगी, वो देखने लगेंगे, वे केवल द्वारकाधीश का दर्शन करें। द्वारकाधीश का दर्शन करने वाले हो, हाँ थोड़ा बॉन्ड लिखो, हाँ तब ऑपरेशन होगा, तब आपको दृष्टि मिलेगी, नहीं तो अंधे रह जा। तो दृष्टि नहीं कि आंख प्राप्त होते ही फिर देख रहे दूरदर्शन टेलीविजन, बेकार है, अंधा रहना अच्छा है। हाँ आप निरक्षर थे, इलिटरेट थे, साक्षरता अभियान चलता है हमारे देश, साक्षरता, सबको साक्षर बना दो, सबको लिखने पढ़ने सिखाओ। लिखना पढ़ना शुरू करते ही फिर क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार में क्या पढ़ते हैं, ये उवाच है, वो उवाच है, रुक्मिणी उवाच तो नहीं होता है, पवार उवाच और क्या उवाच, फलाना आतंकवादी उवाच, ये राष्ट्रपति ट्रंप हुआ छ, उनको ना तो बोलने आता है ना तो बकते ही रहते हैं। तो उसे अच्छा कि पढ़ना, अनपढ़ ही होना अच्छा है, अनपढ़ लोग थोड़े अधिक भावुक और श्रद्धालु होते हैं। पढ़ते ही बिगड़ जाते हैं, पढ़ना सीखा तो कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ भगवान, बाप दाखो ना तो श्राद्ध कर, सम्राट चालू बन जाते, चालू सब बंबई के लोग कहते हैं, बंबई के लोग कैसे होते हैं, चालू चालू चालाक चापलूसी चमचे चमचा चमचेगिरी करते हैं, सीखते हैं। तो रुक्मिणी कह रही है जी, ऐसी बात गोपियों ने भी कही है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। या दृश्यमताम कहा है, जो आंख वाले हैं उनको फलम लाभम कहा है, अखिलार्थ लाभम दृश्यमताम। तो जिनकी आंखें है उसका फल क्या है, उसकी पूर्णता क्या है, आपका दर्शन रूपम दृशाम, आपके रूप का दर्शन ही उस आंख की पूर्णता है, दृष्टि की पूर्णता, दृष्टि का फल, दृष्टि सफल, दृष्टि ने देखा, आंखों ने देखा, आंख सफल, आंख सफल, विफल नहीं सफल। तो आंख का साफल्य आपके दर्शन में है, रूपम दृशाम। तो ये बात आंखों के संबंध में, या ओके। तो गोपियों ने कहा, गोप्या ऊचुहु अक्षणवताम फलमिदम परम विदामः सख्यः पशुन अनुवेशयतो वयश्यैहि। तो गोपिया भी कह रही कि आंखों की पूर्णता किसमें है, आंखों का फल, आंखों की पूर्णता, आंखों की बहादुरी, आंखों का पुरुषार्थ किसमें है। कृष्ण जब अपने मित्रों के साथ, और भी गायें भी है, गायें आगे है, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल भी है, वे जब वन में प्रवेश करते हैं तो उस समय का जो दृश्य है, दर्शन है, कृष्ण को वन में प्रवेश करते हुए या फिर वन से लौट रहे हैं कृष्ण बलराम के साथ, मित्रों के साथ, गायों के साथ, और फिर हम भी वहां इकट्ठी हो जाती है। जब वन में जा रहे हैं तो हम देखती है, वन से लौट रही है तो हम देखती है, और कृष्णा भी मुरली बजाते हुए हमारी ओर तिरछी नजर से देखते हैं, नए नए रकोने आ। ऐसे कृष्ण को देखना अक्षणवताम फलम, ये देखने वालों के लिए आग का फल है, आग का साफल्य है। जब हम कृष्ण को देखती है, गोपियां कह रही है वही भाव रुक्मिणी ने भी अपने पत्र में व्यक्त किया है। त्वयी अच्युताभिषदि चित्रम अपत्रपम मे। तो रुक्मिणी आगे कह देती, त्वयी अच्युत विशति चित्तम, त्वयी आप में, आप कौन हो? अच्युत हो आप, भगवान को अच्युत कहते हैं। भगवान कभी च्युत नहीं होते, च्युत होना मतलब गिरना, अच्युत मतलब कभी, भगवान कभी नहीं गिरते, भगवान का कभी पतन नहीं होता। संभवामी युगे युगे भी है तो अवतार हुआ, पतन नहीं हुआ। संभवामी आत्ममायया, भगवान संभवामी आत्ममाया, अपने माया से, योग माया से भगवान या योग माया से युक्त भगवान प्रकट होते हैं। वो पत पत गिरते नहीं, भगवान गिरते नहीं, अवतार लेते हैं। जीव गिरता है, जीव च्युत होता है और फिर प्रकृति हे क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के तीन गुण उसको नियंत्रित करते हैं, तीन गुण उसको नचाते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, जो भी है। तीन गुण प्रकृति के, तीन गुण मतलब माया, प्रकृति के तीन गुण उसका चार्ज लेते हैं। बद्ध जीव का पतित हो गया, लेकिन भगवान सदैव अच्युत रहते हैं। अपने धाम में है या इस जगत में अवतार लिए, मैं अध्यक्षे न प्रकृति, भगवान अध्यक्ष, प्रकृति के अध्यक्ष सदैव रहते हैं। प्रकृति उनको नचाती नहीं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृह, भगवान ही कह सकते हैं ऐसा। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, संसार में जो मैं कार्य करता हूं उसे मैं लिप्त नहीं होता, लेपायमान नहीं होता। उस कार्य का कुछ रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया मुझे भोगनी पड़ती, ऐसा कभी नहीं होता, संभव ही नहीं। न मैं कर्म फले स्पृहा, न तो कर्म मुझे कोई स्पृहा होती है, इच्छा होती है, वो मेरी लीलाएं होती है सब, और अपनी स्वेच्छा से भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान इच्छा शक्ति, भगवान की एक शक्ति है इच्छा शक्ति, भगवान की एक शक्ति है इच्छा शक्ति। कई सारे अलग अलग शक्ति, लीला शक्ति, भगवान की लीला शक्ति, इच्छा शक्ति। तो त्वयि त्वयि अच्युत विशति चित्तम, फिर ये जब हो ही रहा है, मैं जब आपके गुणों के संबंध में सुनती हूँ और वे गुणों के वचन जब मेरे हृदय प्रांगण में पहुँचते हैं तो हरतो अंगतापम, मेरा अंगताप मिट जाता है और मैं फिर आपकी ओर आकृष्ट होती हूँ। और मेरा मन, मेरा चित्त, चेतना आप में प्रवेश करने लगती, आपकी ओर दौड़ने लगती है, आपके चरणों में प्रवेश करती है। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम, राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की। भगवान क्या करो, भगवान क्या करो, अद्यैव मे विशतु, आज ही प्रवेश करने दो। विशति, रुक्मिणी ने विशति कहा है, विशतु प्रवेश करने दो। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, मेरे मन को प्रवेश करने दो। कहा? आपका जो कृष्णत्वदीय पद पंकज पांजरांतम, पद पंकज आपका पद कैसा है? पंकज पद पंकज या चरण कमल। तो मेरा मन है हंस, राजा कुलशेखर, मेरा मन है हंस, हंस रूपी मेरा मन आपके कमल रूपी चरणों में प्रवेश करने दो, आपके चरणों के अगल बगल में इर्द गिर्द उसको विहार करने दो। तो रुक्मिणी वही बात दूसरे शब्दों में कह रही है, विशति चित्तम। तो मेरा चित्त जब आप में प्रवेश करता है, आपकी ओर दौड़ता है, आपका स्मरण करता है, तो वह पत्रपम मे मत चित्तम भी भगवान कहे। आपके भक्त की आप पहचान है तो भगवान ने कहा मत चित्तम, मत चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम। मेरे भक्त का चित्त मत चित्त मुझ में लगा रहे, मत चित्त मुझ में, मत चित्त। तो रुक्मिणी का चित्त भगवान में, तो फिर होता क्या है? अपत्रपम मैं निर्लज बन जाते हैं, मुझे लज्जा को छोड़ती हूं। अभी तो छोड़ दिया मैंने, इसीलिए आपको पत्र लिख रही हूं। संसार को पता लगने दो, ये रुक्मिणी कृष्ण को चाहती है, आपको चाहती हूं मैं, आपको इसको छिपा के नहीं रखूंगी मैं, अब तो सारे संसार में घोषणा होगी। इसमें लज्जा की क्या बात है, ये तो मैं निर्लज बनती हूं और लिख रही हूं आपके बिना मुझे चैन नहीं है, क्या नींद नहीं आती। हरी हरी। तो श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, अनुवाद को पुनः सुनते हैं, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर, जो सुनकर, जो गुण कैसे हैं, जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश कर करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, वो गुण के वचन, और सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वालों वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्णा, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। और प्रेमानंदे हरि हरि ओ। प्रश्न है, रुक्मिणी के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। शक्ति तत्व
शरीर और आत्मा
में, शक्ति तत्व
कृष्ण में और राधा में अंतर नहीं है,
वो भी बुरा देह भेद गतौ तौ।
क्या हाउ डज इट बिगिन?
एकात्मनाम अपि एक ही आत्मा होते हुए, कौन? राधा और कृष्ण एक ही आत्मा होते हुए, एक ही आत्मा होते हुए पूरा बहुत समय पहले ये पूछना नहीं कि कब, देह भेद गतौ,
एक ही आत्मा के फिर दो हो गए, एक हो गए कृष्ण और दूसरी हुई राधा। और फिर चैतन्याख्यम अधुना प्रकटम अधुना, चैतन्याख्यम अधुना प्रकटम, अब मतलब 500 वर्ष पूर्व अभी प्रकट हुए हैं। तद्वयम ऐक्यम च अवतम, जो एक के दो हुए थे अभी दो के पुनः अब एक हो रहे हैं। ऐक्यम च अवतम, ऐक्य को प्राप्त किए। तद्वयम तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो एक के दो हुए थे राधा और कृष्ण अब बने हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर कहा है अंतः कृष्ण बहिर्गौरा, और इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में अंतः कृष्ण, अंदर है चैतन्य, अंतः का अंदर है कृष्ण, बाहर है गौर। तो शायद दोनों का एक ही हार्ट होगा। या निश्चित ही उनके उनका शरीर है नहीं, या शरीर है तो वो शरीर पंच महाभूतों का शरीर नहीं है। आत्मा जिसका बना हुआ है उसी का शरीर बना हुआ है, सच्चिदानंद विग्रह। हरि हरि। विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, मैंने इतना तो आत्मा भौतिक शरीर नहीं है, आत्मा और शरीर में भेद नहीं है, आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, इन दैट मच। संसार में दो का अस्तित्व है, एक शक्ति का और दूसरा शक्तिमान का, तीसरा कोई तत्व या वस्तु या तीसरे को अस्तित्व ही नहीं है। संसार में जो भी है, जहां पर भी उंगली करके आप दिखाना चाहोगे, फिर भगवान के अलौकिक साम्राज्य में, भगवान के लौकिक साम्राज्य में एक है शक्तिमान भगवान और दूसरी है शक्ति। ये शक्ति में प्रकार है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति।
लेकिन ये दो ही होंगे, फिर शक्तिमान जो भगवान है उनके और विस्तार अवतार होंगे। ये तेजाम शकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो फिर इधर राधा रानी के विस्तार होंगे। और फिर राधा रानी दुर्गा बनेगी इस संसार में महामाया। लेकिन शक्ति ही है, राधा रानी भी एक शक्ति है, दुर्गा भी एक शक्ति है। ये सारे 24 एलिमेंट्स, ये सब धातु है, ये भी सारी शक्ति है भगवान की। इसको सांख्य कपिल भगवान कहे, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच पंच महाभूत और पांच इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस रूप रस गंध और मन बुद्धि अहंकार। अच्छा, तो ये भी शक्ति है, ये सारे शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। तो बता दो क्या है शक्तिमान और शक्ति, और शक्तिमान के अलावा कोई है ऐसा, बता दो, कहो है तो। या तो शक्तिमान है या तो बिल्कुल शक्ति है। इधर भी जल्द भी देखोगे या तो शक्ति है, 24 तत्व है, या फिर जन्माद्यशयतः, यतः जिनसे उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जन्म और फिर सृष्टि और फिर प्रलय, वही भगवान। अभिज्ञ स्वराट, ऐसा अभिज्ञ स्वराट भगवान का गुण कहा। और उनका और वर्णन करते हुए वेदांत सूत्र भागवत यही से शुरू होता है। ऐसे भगवान, कैसे भगवान? यतः जिनसे उत्पन्न होता है। क्या क्या उत्पन्न होता है? जन्माद्यशयतः, जन्म आदि। जन्मादि मतलब क्या? जन्म, सृष्टि और प्रलय जिनसे होता है, वही भगवान। तो फिर भगवान और सृष्टि जिनसे होती है, मतलब सारी शक्ति का विस्तार हुआ। और उस समय फिर जीव की स्थापना होती है उस प्रकृति में, महाविष्णु जब सृष्टि करते हैं तो महत्तत्व प्रधान से महत्तत्व, और फिर सारे जीव को अपने अपने शरीर मिल जाते हैं, फिर एक्शन शुरू हो जाती है। तो तटस्थ शक्ति है और फिर बहिरंगा शक्ति है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? और तुम्हारे और प्रश्न होंगे शायद, लगता है नॉट फिनिश्ड। अनिता गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल।